प्रियतम भक्त्या समानुरक्तस्य कात संतिन भूतले। गोपियों के समान इस पृथ्वी में गोलोक वृंदावन में कोई भी अधिक कृष्ण का प्रिय नहीं। उद्धव की तो बात क्या, क्योंकि उद्धव उनकी चरण की भूमि चाहते हैं। इसका हेतु क्या है? यह प्रेम अपनी सीमा तक उन गोपियों में है, श्रीमती राधिका में, और मैं वो नहीं हूं। जैसे समस्त भक्तों में उद्धव जी श्रेष्ठ होने पर भी सहाय हो सकते हैं, उद्धव गुरु भी हो सकते हैं, गुरु माने अच्छा सलाह देने वाला इत्यादि, और बंधु भी हो सकता है, किंतु उद्धव जी कृष्ण की प्रेयसी होंगे नहीं, प्रिया हो जाएंगे नहीं होंगे, शिष्य होंगे नहीं होंगे, सखी होंगे दासी भी नहीं, इतनी कमी है इनमें। कहो जैसे सीता जी हो जाएंगी या सत्यभामा रुक्मिणी हो जाएंगी, कहते प्रेयसी नहीं होंगी, प्रिया भी हो जाएंगी, शिष्य भी दासी हो जाए, सखी नहीं होंगी, सखी उनके लिए सत्यभामा रुक्मिणी सीता इत्यादि के लिए संभव है। कृष्ण सुखई के तात्पर्य माने सब प्रकार से ये गोपियों में कृष्ण के ही सुख हो और कोई बात उनमें नहीं है। जिस किसी उपाय से हो कृष्ण की स्तुति विधान करना है उनका एकमात्र उद्देश्य है, और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं। इसलिए वे सभी कृष्ण की हो चुके हैं, गुरु बंधु प्रेयसी शिष्य सखी दासी, ऐसा कोई भी संपर्क नहीं है जो उनमें नहीं है, कोई भी चीज नहीं कर सकते। नंद जशोदा बाबा उनकी प्रेयसी शिष्या सखी ये नहीं हो सकते, उनके जो मित्र मंडली है सखा हो जाएंगे प्रेयसी नहीं हो सकते, ये शिष्य भी होंगी दासी भी हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। कोई भी संपर्क में कृष्ण जो कुछ चाहते हैं उसी संपर्क से संपर्कित होकर के उनकी सेवा कर सकते। लोक धर्म वेद धर्म स्वजन आर्यपथ मान अपमान संपर्क प्रभृति कोई भी रूप कोई भी इनके लिए अपेक्षा नहीं, उन लोगों के लिए है, इसलिए इनमें कोई भी उपेक्षा, सब कुछ रूप में सब प्रकार से ये कृष्ण की सेवा कर सकते। गोपियां राष्ट्रीडा में कृष्ण की इच्छा हुई या राष्ट्र हो तो घर से दौड़ी आई उनकी सहायता, उद्धव जी आए न कर सकते हैं, न सखा लोग आए न कर सकते हैं, माता पिता कोई भी नहीं कर सकते, इसलिए सहाय। कृष्ण गान कर रहे हैं, उद्धव जी बिना बजाएंगे न मृदंग बजाएंगे न कृष्ण जैसा गान कर लेंगे, कृष्ण उद्धव से तुम ही जरा ऐसा करो तो जरा आलाप लो तो करेंगे, जरा हमारे जैसा नृत्य करो तो, और गोपियां क्या कर देंगे, वो पंचम स्वर से कर रहे हैं वो सप्तम स्वर में चढ़ा देंगे, कृष्ण को शिक्षा देंगे ऐसे ऐसे कीर्तन करना होगा, नृत्य के समय में ऐसे ही हाथ होगा, वो हाथ ऐसा होगा, पैर ऐसे चलेंगे, बाएं पैर के साथ में दाहिना हाथ चलेगा, उनको सिखाएंगे। उद्धव जी चुपचाप सीखेंगे जैसा कहेंगे, गोपियां कहेंगे अच्छा ऐसा नृत्य करो नूपुर न बजे और खूब जोर से नृत्य करो, उद्धव कर लेंगे नूपुर पहने ही नहीं है न बजा सकते, और गोपियां क्या कर देंगे, वो कर देंगे कृष्ण कहेंगे अच्छा नूपुर एक ही बजे लाखों नूपुरों में से, तो क्या होगा, ऐसे रूप से नृत्य करेंगी ये सब छोटी छोटी घंटी गाएं हैं खुद खुद घंटी, उसमें केवल एक ही बजेगी और कोई नहीं बजेगी,
घंटी का
इस तरह से वो सहाय। ऐसा कोई वाद्य यंत्र है नहीं है जो नहीं जन, ऐसा कोई नृत्य नहीं नहीं जन, ऐसा कोई ताल स्वर इत्यादि राग रागनी नहीं है जो नहीं जन, इसलिए सहायता करते। गुरु गोपियां कृष्ण की गुरु हैं, गोपियां गुरु की भांति हितोपदेश कर, विशेषतर प्रेम शिक्षा के आदि दिव्य व्यापार में कृष्ण की वो गुरु हैं। कृष्ण स्वयं ही अपने मुख से कहेंगे, बांधव ये पहले मैंने बतलाया था, पाठ किया था
नहीं किया था, ऐसा उदाहरण नहीं दिया था।
बांधव बंधु से बांधव बंधु किसको कहते
हैं? गुरु वाले शिष्य था से सहाया गुरु व शिष्य बुजी सा बांधव आप दिया है, शिष्य बुजी सा दोनों छोड़ दिया।
अरे थोड़ा आ जाएगा आ जाएगा। बांधव बंधु बंधु किसको कहते हैं? रक्त से संबंधित बंधु। बंधु की न्याय प्रतिमूल आचरण करती हैं। प्रेयसी गोपियां कृष्ण के सहित कृष्ण के प्रेयसी हैं। प्रेयसी माने स्त्रियां प्रेयसी किस लिए नहीं है? स्वच्छंद गति से उनका प्रेम का व्यवहार नहीं होगा। और इनका कैसा है? स्वच्छंद गति से हसी मजाक स्त्री उसके साथ में एक आसन में बैठने में हो सकता है कि संकोच करेंगे, इनमें को किसी प्रकार का संकोच नहीं। यहां तक कि अपने अपना कुछ नहीं है जो कृष्ण को नहीं दे सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कृष्ण को नहीं दे सकते, स्त्री के लिए संभव पर नहीं। शिष्य गोपियां शिष्य की भांति कृष्ण का अनुगत्य करते हैं, जो सब शिष्य हैं। कैसे गुरु की सेवा करते हैं? एक तो आत्मवत और वो भी विषमभय न गुरु सेवा, गुरु को कैसी ब्याज के लिए कहने की जरूरत नहीं है, उनकी जो चीज की आवश्यकता है पहले से वो तैयार है, ऐसा शिष्य होना चाहिए। जिस किस भी की जरूरत है आदेश देने की जरूरत नहीं, आदेश देने के पहले वो सब चीज ठीक ठाक कर सकते, उनके भावों को समझ ले। जब तक कोई किसी के भावों को नहीं समझता तब तक उसके लिए सेवा संभव पा नहीं, इसलिए उसको भावों को अंतर जो निहित भाव गोपियां सबसे अधिक उनकी समझती हैं उसी रूप में करती हैं। यहां तक कि कृष्ण किसी विषय को चाहते हैं और उनको लज्जा लग रही है कहने में, तो उसके पहले से वो चीज तैयार है, पहले से वो तैयार है। यह है शिष्य, कभी भी कृष्ण का कोई उल्लंघन नहीं करती आदेश। शिष्य को गुरु का कोई भी आदेश उल्लंघन नहीं करना चाहिए, यह गुरु की अवज्ञा हो जाती है, अपराध है। गोपियां किसी भी कृष्ण के आदेश को उल्लंघन नहीं करती कभी। कृष्ण ने कहा कि घर जाओ, उनके भावों को समझ गया और उस देश का उल्लंघन नहीं कर करके लोगों की दृष्टि में उल्लंघन मालूम हुआ कि तो उल्लंघन नहीं। सखी जो निरुपाधिक प्रतिपरायण है, निरुपाधि कोई जागतिक उपाधि नहीं है, जिस प्रेम में प्रति है सुख में सुखी दुख में दुखी, गोपियां कृष्ण के द्वारका जाने पर क्यों दुखी है? कृष्ण बड़े दुखी हैं द्वारका में, इसलिए दुख। यदि कृष्ण सचमुच में वहां पर सुखी रहते तो ये सुखी हो जाते, किंतु जानती हैं कि उस तरह से कोई सेवा करने वाला द्वारका में नहीं। यशोदा मैया जानती है जो देवकी कृष्ण को खिला पिला नहीं सकती, कृष्ण कभी उनको मां ही नहीं कर सकता और कभी नहीं कहेगा कि मुझको भूख लगी है, तो रोहिणी कुछ कुछ कर सकती, इसलिए वो दुखी है। इसलिए गोपियां इसलिए दुखी हैं कि कृष्ण की वहां पर कोई सेवा करने वाला नहीं। सखी ये बता, दासी मोल से बिकी हुई दासी की भांति ये कृष्ण की सेवा करती। प्रिया, प्रिया माने पतिव्रता की स्त्री, तत्तुल्य एक निष्ठत्व, एक निष्ठा के साथ ये प्रिया है। सीता जी कृष्ण की प्रिया है, स्त्री है, प्रेयसी नहीं है,
प्रेयसी पत्नी नहीं,
प्रेयसी नहीं, किंतु गोपियां पत्नी भी होते हुए दासी भी है, सखी भी है, सभी कुछ है। इसलिए गोपियां समस्त भक्तों की अपेक्षा श्रेष्ठ है, इनके समान और कोई श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए बतला रहे हैं, बतलाने का तात्पर्य क्या? यदि कोई साधक हो और उसका चित्त निर्मल हो, इनको सुन करके ऐसे ही गुणों को पाने की चेष्टा करेगा, सुन करके भी ऐसा यदि नहीं हुआ तो बड़े दुख की बात है। यदि गोपियों जैसी सारी कामनाएं निकल जाएं, कोई कामना न रहे, बस कृष्ण को प्रीति हो, कृष्ण की दासी बन सके, कृष्ण की प्रेयसी बन सके, कृष्ण की शिष्या बन सके, कृष्ण की गुरु बन सके, इनमें थोड़ा सा भी लोभ हो गया तो काम हो जाएगा चैतन्य चेतन। इसलिए चैतन्य चेतन का गोपियों की महिमा का वर्णन करेंगे। ऐसा किसी को भाव थोड़ा सा हो जाए, मान लें कि किसी को हो गया और फिर एक वर्ष तक ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आई जब फिर सुने, तो क्या होगा? शुक्रिया। इसलिए साधन भी ऐसा कंटिन्यू होना चाहिए, तब यह होगा। यही समस्त कारण है, समस्त कारण भक्तों की अपेक्षा और दूसरे जितने प्रकार के भक्त हैं, उद्धव तक, सत्यभामा रुक्मिणी तक, नारद इत्यादि, सबसे श्रेष्ठ ये गुरु। कृष्ण का जन नंगे चले आओ, गोपियों ने क्या किया? सत्यभामा रुक्मिणी आएंगी ना, सीता जी आएंगी, कौन आएगा? घर से निकल जाएंगी, किंतु नहीं आएंगे। अच्छा ठीक है, आप जो कुछ कहते हैं ऐसा अब आदेश का पालन करने वाला कृष्ण की मनो के अनुसार, मन भावना के अनुसार नहीं, गलत कोई नहीं। क्यों? कृष्ण दिख रहा है ये देखो, और कोई भी जगत में हमारे इस आदेश को पालन करने में संभव नहीं, प्राण दे देगा, किंतु ये नहीं, ये दिखलाना था उनको, उनको ये नग्न नहीं देखना था, किंतु ये जगत में आदर्श स्थापन कर रहा। इसी को और पुराणों में बतला रहे हैं, सहाय गुरव शिष्य भुजिष्य बांधवा प्रिय सत्यं वदामि ते पार्थ गोप्यो किं न मे। गोपियां हमारी क्या नहीं है? जगत में ऐसा कोई संबंध नहीं है जो गोपियां नहीं है, सभी संबंध है। माता को प्रेयसी होना संभव नहीं, माता प्रेयसी, प्रेयसी या प्रिया दासी नहीं हो सकती, पिता भी नहीं हो सकते, गोपियां पिता माता भी हो जाएगी, सब कुछ उनके लिए संभव है। इसलिए गोपियां सबसे श्रेष्ठ कृष्ण की प्रेयसी, प्रिया, शिष्या, गुरु सब कुछ। मैंने भोग लिया रसने जास के संबंध में, भोग गया अपने वो एक वस्तु जैसे बन जाती, भोग की विषय बन जाती। कृष्ण जिस रूप में उनको ग्रहण कर लें, स्त्री और सपत्नी दोनों गोपियां स्वतः कृष्ण की स्वकांता है। प्रकट लीला में पार्थिव कांता के रूप में प्रतीयमान होने पर भी पतिव्रता स्त्री पति एक निष्ठा की तरह ही कृष्ण में उनकी निष्ठा थी, ये ठीक है। पर जगत में जो भाव है उसी भाव को लेकर के उतरती हैं, उनमें सभी भाव हैं। अपनी सेवा के द्वारा अपनी समस्त इच्छा को छोड़कर कृष्ण की इच्छा के अनुरूप सब प्रकार से कृष्ण को सुखी करने का जो भाव है ये केवल भोगियों में, इसलिए कृष्ण की भोगिया। जेहेतु कभी किसी समय कृष्ण का अंतर्भाव का अंतर मन में क्या भावना है, कृष्ण क्या चाहते हैं, इस चीज को अंतर से समझने वाला कौन है सबसे अधिक? गोपियां हैं। इसका और कोई नहीं समझ सकता। इसमें कृष्ण क्या कहते हैं और मन की भावना क्या है, ये दूसरों के लिए समझना बड़ा भारी कठिन है, ये गोपियां समझ लेती हैं। तो कृष्ण कहते हैं हमको स्पर्श मत करना, इसका मतलब क्या, कृष्ण किस लिए कह रहे हैं, गोपियां समझ लेती हैं, ठीक अनुरूप व्यवहार करती हैं। तो ऐसा करती हैं जैसे मान करके चली जाएंगी कृष्ण स्वयं उनको स्पर्श करें, किस भाव से कैसे कृष्ण को, कृष्ण की सेवा करना चाहिए कैसे, उस रूप में वो जानती हैं, जो विश्व का कोई भी भक्त कोई भी नहीं जानता। उसको सबको सीखना ही यही रागानुगा भाव भजन मार्ग, कैसे उनको प्रसन्न करना। कृष्ण कभी व्यक्त नहीं करते कि मैं क्या चाहता हूं, किंतु गोपियां उस भाव को समझ लेती हैं, उसको उठा दो। प्रेम सेवा की परिपाटी भी वो अच्छी तरह से समझती हैं और कैसे कृष्ण को सुखी करना है, तन से, मन से, वचन से, भाव से, यहां तक कि विरोधी भाव से, जैसे उनको प्रसन्न करना। चंद्रावली जी का त्याग कम नहीं, जब उसको विचार करेंगे तो चंद्रावली श्रेष्ठ समझ में आती है। ये सापत्निक जैसा भाव वो ग्रहण करती है और राधा जी के उत्कर्ष को स्थापित करती है, ये किस लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने। प्रत्येक गोपियों का इसलिए कहते हैं सही गोपी माने गोपी कने मध्य उत्तम राधिका, उन समस्त गोपियों में उत्तम सबसे श्रेष्ठ श्रीमती राधिका जी, रूपे गुणे सौभाग्य प्रेमे सर्वाधिका, रूप में गुण में सौभाग्य में प्रेम में सब प्रकार से श्रेष्ठ। इसलिए श्लोक बतलाया है, यथा राधा प्रिया विष्णु तस्या कुंड प्रियम तथा सर्वे गोपेशु सेविका विष्णु अत्यंत बल्लभा त्रैलोक्य पृथ्वी धन्य इस त्रिलोक में पृथ्वी धन्य है। किसलिए धन्य है? यहाँ पर वृंदावन है। वृंदावन किस लिए धन्य है? गोपिकाएं वहां पर हैं इसलिए। और गोपिकाएं किस लिए धन्य है? श्रीमती राधिका जहाँ पर हैं उन गोपियों में इसलिए ये सबसे धन्य है, श्रेष्ठ है। ये सब तो बोल गया है। कृष्ण विचार कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं ऊंट गधे और कौवे ये तीन प्रकार के लोग इस आम रूपी पके हुए फल की तरफ में नहीं आए, इसलिए मैं संकोच छोड़ करके ऊंट खाएगा कांटा, गधे वैसे ही दुलत्ती खाएंगे और कौवा निमौरी खाएगा, आम की तरफ में नहीं आएगा, इसलिए मैं भक्तगणों को नमस्कार करके प्रणाम करके निशंक रूप में अब मैं उस चीज को बतला रहा हूँ जिसको बतलाने की मैं चेष्टा कर रहा था। कृष्ण विचार एक रहे अंतर, कृष्ण के हृदय में एक विचार आता है, पूर्णानंद पूर्णरस रूप कहे मोरे। लोग कहते हैं शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया है, पूर्ण आनंद पूर्ण रस रूप कहे मोरे। कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है, उसमें आनंद कृष्ण में परिपूर्ण रूप से है, और आनंद ही नहीं बल्कि रस भी है, इसलिए रसामृत सिंधु उनको कहा गया। अमहिते आनंदित है त्रिभुवने, हमसे जगत त्रिभुवन मेरे रूप को गुण को देख करके आनंदित हो जाता है। हमके आनंद दीबे ऐसे कौन जा, हमको कोई आनंद देगा जगत में? ऐसा कोई है जो कृष्ण को आनंद दे दे? कोई नहीं, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती। आमा हई जार है शत शत गुण, हमसे जिसे सैकड़ों सैकड़ों गुण अधिक हो, रूप अधिक हो, से जन वही व्यक्ति कृष्ण को आनंदित कर सकता है, कृष्ण के चित्त को हरण कर सकता है, किंतु संसार में कहीं भी कोई हमसे गुणी, कोई हमसे अधिक रूपवान सुंदर समस्त गुणों से अलंकृत कोई नहीं है हमसे। हाँ, देखता हूं जब विचार करके, जगत भी इस चीज को नहीं जानता। जगत क्या जानता है? सबसे सुंदर कृष्ण है, सबसे गुणी कृष्ण है, अखिल रसामृत सिंधु कृष्ण है, उनके बराबर कोई नहीं। किंतु कृष्ण अकेले में विचार करते हैं, नहीं कोई है। मैं जगत का चित्त आकर्षण करता हूं और श्रीमती राधिका जी हमारे चित्त को आकर्षण कर लेती है। कोटि काम जिनी रूप यद्यपि अनार असमुद्र रूप माधुर्य सम्य नहीं जा, मोर रूपे अपायित है त्रिभुवन राधा दर्शन मोर जुड़ाए। पांच चीजें हैं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, चार पांच चीजें हैं ना, यही चीजें इस जगत में। अब इन पांचों चीजों का वर्णन इसमें कर रहे हैं, इसमें बता रहे हैं सबसे पहले रूप का जो आंखों से दिखता है, मोर रूप आप प्यारी तो है त्रिभुवन, कृष्ण के रूप को देख करके पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य विपरीत धर्म का आचरण करता है, जड़ चेतन चेतन जड़ कास्त्री अंग थे कल्पदायत देवी सम्मोहिता आर्चरिता कई हत्र लोक्यम। ऐसा कौन सा पशु पक्षी की पतंग है जो कृष्ण को देख करके मुग्ध न हो जाए और उसका धर्म परिवर्तन हो, जड़ जंगम बन जाता है, जंगम नदी पत्थर बन जाती है और पत्थर पिघल जाता है, पशु पक्षी चलने वाले ये अचल हो जाते हैं और अचल सचल बन जाता है, वृक्षों से रस की धारा गिरने लगती है और जहां रस है पानी है वो एकदम जम जाता है, पत्थर बन जाता है। ऐसा मेरा रूप है, किंतु राधा जी को देखकर के मेरा नत्र एकदम परित्रिप्त हो जाता, परित्रिप्त मैंने
जुड़ा है किसी,
अत्यंत आकर्षित हो जाता है, सुशीतल हो जाता है। कृष्ण का रूप, कृष्ण का रस, कृष्ण के अंगों का गंध, कृष्ण का स्पर्श और कृष्ण का शब्द, ये पांच चीज है। राधा जी का भी रूप है, उनमें भी रस है, गंध है, स्पर्श है और शब्द है। अब ये तुलना बोलने दृष्टि से ये बतला रहे हैं, अपनी तुलना से राधा जी की तुलना करके राधा जी का स्पर्श दिखला रहे हैं। उसी को यहाँ पर बतला रहे हैं, राधा जी कृष्ण के रूप रस गंध शब्द और स्पर्श से आकुल हो जाती हैं और कृष्ण राधा जी के रूप रस गंध स्पर्श और शब्द से वो भी आकुल हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। कृष्ण का रूप कैसा, कृष्ण सोचते हैं हमारा रूप कैसा है, कोटि कंदर्प से भी कृष्ण का रूप परम मनोहर है। हम लोग के अंदर में कंदर्प का एक छोटा सा भी भाव आकर के पशु पक्षी मनुष्य इत्यादि को अपने धर्म से विचलित कर देता है, एक छोटा सा कंदर्प का एक अंश आकर के हम उसको सह नहीं सकते। कृष्ण का रूप कैसा है, कोटि कोटि कंदर्प मिल करके भी उनकी क्षमता नहीं कर सकते, हमसे अधिक तो रूप माधुर्य किसी का है नहीं। हाँ, श्रीमती राधिका का एक रूप कोटि काम जीनी असमो ढूंढ का रूप है, किंतु राधा जी के दर्शन से ही परित्रिप्त हो रहे हैं, सुशीतल उनके नेत्र हो रहे हैं। इसे पूछा जाए कि रूप माधुर्य में राधा जी का रूप माधुर्य कृष्ण से अधिक है। इसको इस रूप में समझो, कृष्ण राधा जी का रूप देख रहे हैं और राधा जी कृष्ण का रूप दे रहे हैं, राधा जी उनका देख करके एकदम अज्ञान सी हो जाती है, जमीन पर लोटपोट हो जाती है, किंतु कृष्ण का ऐसा नहीं होता। तो किसके रूप में अधिक माधुरी है, राधा जी के न कृष्ण के, कृष्ण के, ऐसा प्रतीत होता है। कृष्ण का रूप है इतना मादकता भरा, राधा जी का है कृष्ण एकदम, राधा जी के रूप को देख करके इतना जो है कृष्ण से भी अधिक है, तो अभी कृष्ण को उतना नहीं होता, विवश प्रेम में होकर के मूर्छित होकर के गिर पड़ेंगे, ये बहुत कम होता। यद्यपि कहीं पर वर्णन है, बंसी करण निपतिता खलितम शिखंडम भ्रष्टं चपीत वसनम ब्रजराज सोनो जस्या कटाक्ष सर्गाति मूर्छितस्य तंगराधिका परचरामि कदारसेन। यह है किंतु सदप में इसी तरह से मोर बंसी गीते आकर्षे त्रिभुवन, मेरी बंसी ध्वनि त्रिभुवन को आकर्षित करती है, जमुना को, पेड़ को, गैया को, बछड़े को, आकाश को, सबको, गोवर्धन को, सबको राधा बचाने हरे मोर श्रवण। किंतु श्रवण जो मेरा है वो राधा जी के वचनों को सुनने से मेरी बंसी की ध्वनि स्थगित हो जाती है, वो नहीं बजती। इसलिए राधा जी के वचन में बंसी से भी अधिक आकर्षण है, किंतु कृष्ण पागल नहीं हो जाते। राधा जी कृष्ण की एक बंसी की ध्वनि क्या आभास से, अर्थात आभास कैसा है, गोवर्धन में गई है, हवा कुछ चल रही है, वहां पर बांस के कुछ पौधे हैं, बांसों में कहीं कहीं छेद भी होता है, और वो छेद बांस वो सब हवा गई उसमें और उसमें से निकल। पहले यहाँ पर बंसी जो थी उसमें छेद कुछ ऐसा था जैसे कि हवा पास करती थी और सब समय बंसी जैसी आवाज निकल। अब शायद बंद हो गया है या कुछ छेद को नहीं होता। नवद्वीप में भी ऐसे वहां पर भी ऐसा, वैसे बंसों के छेद में किसी तरह से फुफला हो जाता है, उसमें प्रवेश कर गई और उसमें से निकली ध्वनि होने लगी। उस समय में राधिका जी उस बंसी की ध्वनि को मैंने बांस को से वो सुना, किंतु समझे जी ये कृष्ण की बंसी बजती है और एकदम प्रेम में विवश होकर के कृष्ण कहते हैं ये देखो बंसी का कोई यहां संबंध नहीं, मेरी बंसी नहीं बज रही, केवल साधारण बांसों में से ही हवा प्रवेश करके बंसी की आवाज निकली और उससे ही वो मूर्छित होकर के गिर पड़ी। मैं राधा जी की आवाज सुंदर एकदम साक्षात रूप में सुनता हूँ, वो भी कैसे गलबहियां देकर के कृष्ण वो कह रही हैं, मैं मूर्छित होकर के गिर पड़ा। डायरेक्ट संबंध से भी हमको जो नहीं होता वो इनडायरेक्ट बंसी के ध्वनि जैसा लगने से ही वो गिर करके मूर्छित। हमारे रूप की बात क्या है, मैं बहुत सुंदर खूबसूरत हूं, राधिका जी बड़ी खूबसूरत है, मैं उनसे मिलता हूं, मिलकर के एक सामने हूं, अपने अंगों से उनका अंग स्पर्श करता हूं, किंतु हमारी वो स्थिति नहीं होती जो श्रीमती राधिका जी का एक तमाल पेड़ को देखने से, कृष्ण को छोड़ो कृष्ण से एक क्षमता है थोड़ी सी, क्या उसके पत्ते हरे और इसलिए वो समझते कि कृष्ण है और उसको एकदम पकड़ करके तन्मय होकर के गिर जाए। संबंध एक केवल वैसा ही केवल एक दूसरी कोई चीज है, और कृष्ण कहते मैं उनको पकड़ करके भी वहां पर खड़ा हूं, उनसे बात भी कर रहा हूं, उस रूप को मैं अपने पास में लेकर के बैठा करके अपने अंगों से स्पर्श कर रहा हूं, मुझे कुछ भी उतना नहीं होता, होता तो है बहुत आनंद होता है किंतु उनके जैसे पागल में नहीं होता। यद्यपि अमार गंध है जगत सुगंध, हमारे अंग के गंध से जगत मत हो जाता है, किंतु यह दिखला क्या रहे हैं, मोर चित्त प्राणे हरे राधा अंग गंध। राधिका जी का देखो और कृष्ण का देखो, कृष्ण राधा जी के पास में बैठे हैं, उनके अंगों की गंध निकल रही है और कृष्ण मौन मुग्ध हो रहे हैं, कहीं उनको ऐसा आनंद नहीं, किंतु पागल नहीं हो गए, मूर्छित होकर के गिर नहीं पड़े। और राधा जी का देखो, कृष्ण की बात छोड़ दो, उनके अंग की बात गंध की, जस्या कदापि वसनांचल खेलो नक्त धन्याति धन्य पौने ने प्रार्थनाई योगेन्द्र दुर्गम गति मधुसूदनोति तस्या नमस्त विश्वान भूवो दिशे। राधिका जी खड़ी है राधा कुंड के दूसरी छोर पर पश्चिम की तरफ या उत्तर की तरफ, और कृष्ण दक्षिण या पूर्व की तरफ, किसी कारण से राधा जी ने मान कर लिया सखियों के साथ में रह रही हैं, कृष्ण से मिल नहीं रही, कृष्ण बड़े अनुतप्त हो रहे हैं, और उसी समय में उधर से राधा जी की तरफ से हवा आई, हवा ने राधा जी का अंश अंचल स्पर्श किया, राधा जी का नहीं राधा जी का अंचल कपड़ा, उस कपड़े में राधा जी का कुछ अंग का गंध उसमें लगा हुआ है, राधा जी का एकदम डायरेक्ट नहीं, और राधा जी का अंग का गंध उस कपड़े में उसके छोर में अंचल में, और हवा ने उसको उड़ाया, उसका गंध ले लिया थोड़ा, और लेकर के जब इधर आया कृष्ण को लगा तो उन्होंने कृष्ण ने सोचा जी राधा जी मिल गई, किंतु पागल नहीं, किंतु राधा जी का क्या है, राधा जी की कैसी स्थिति, कृष्ण की अंग की गंध की तो बात ही क्या। उद्धव जी कृष्ण के गले की माला लेकर के आए, तो कृष्ण के अंगों का गंध है ना, किंतु इनके अंग के गंध के साथ में मिल गया, और बासी है वो, कृष्ण के उतरे हुए कपड़े भी हैं उसको पहन करके आए, और वो जबकि वहां पर गोपियों के समाज में पहुंचे तो राधा जी की बात क्या है, उनकी जो
सेविकाएं
हैं वो कहेंगी ये कौन है, श्याम सहाय किंतु श्याम नहीं। उद्धव जी कहते हैं जैसे ये कैसे समझ गया कि ये मैं मुकुंद का दूत हूँ या कृष्ण का दूत, और ये हमारी नाके कभी भी जरूर ठीक करते, ये गंध जो है ये कृष्ण की है, ये पहना है तो क्या है, ये मालूम होता है कृष्ण का उच्छिष्ट माला और भस्म पहन करके आया है, इसमें गंध तरह के लगे हुए हैं, उसमें तरह तरह के सेंट लगे हैं, अपना भी अंग का गंध है, उसमें और भी तरह के चीजें गंध हैं, किंतु उसमें से एक गंध आ रही है जो ये कृष्ण की है। कैसे, यहाँ पर 20 आदमी मिलकर के कीर्तन कर रहे हैं, सबको जो पहचानने वाला होगा उस 500 साउंड में से मिले हुए शब्द से उसमें से निकाल लेगा बारीकी से ये जो शब्द आ रहा है घुसपैठ का है, निकाल सकता है, हाँ निकाल सकता है, कौन, सभी लोग नहीं जो बाकी हैं, कोटि कोटि गोपियां एक साथ में गा रही हैं, राधा जी उसमें भी गा रही हैं, सबका स्वर अद्भुत अद्भुत है तो सभी लोग सप्तम स्वर में या पंचम स्वर में गान कर, किंतु कृष्ण बारीकी से देख करके उसमें से ले ये किसका है, ऐसे ही उन गंधों में तरह तरह के गंध हैं उसमें, किंतु गंधों में राधिका जी क्या करेंगी, देख रही हैं इसमें से ये जो स्पेशल गंध है ये कृष्ण का, सुनते ही बस देखते ही बस कृष्ण ये विचार करके देखे हमको ऐसा क्यों नहीं होगा, अब मैं राधा जी के डायरेक्ट अंग का जो गंध है मैं उनके साथ में बैठा हूं अनुभव कर रहा हूं, मैं तो पागल नहीं हूं, ऐसा क्यों, इसलिए ऐसा मालूम पड़ता है, समय हो गया है, ऐसा मालूम पड़ता है कि मैं राधा जी से सुंदर हूं, राधा जी से रस में अधिक हूं, राधा जी से भी अधिक हमारे अंदर में माधुर्य है, हमारे अंगों में गंध है, हमारे बंसी के स्वर में कुछ मादकता है जो राधा जी को ऐसा हो जाता है, इसी को कहें जी विपरीत, निश्चित मेरे अंदर नहीं तो राधा जी को ऐसा क्यों होता है, पहले कहा ये राधा जी हमारी सब विषय में गुरु हैं और उनका सब चीज हमसे श्रेष्ठ है, अभी आप कहते हैं विपरीत, विपरीत मैंने क्या, यदि ऐसी बात होती तो मैं मुझसे क्यों नहीं हो जाता जो वो हो रही है, तो इसलिए मतलब है जैसे हमारे माधुर्य में मादकता है। अच्छा तो मैं देखूं तो विचार करके कैसे इसको समझा जा सकता है, इस चीज को समझने के लिए राधा जी का भाव और खांति लेकर के जगत में महाप्रभु के रूप में इन सबको जो समझ सकता है थोड़ा थोड़ा उनको लोभ होगा, आज इस पर विचार नहीं करेगा उसके लिए मन में तरह तरह की चीजें हैं, पाने के लिए लाखों प्रकार की चीजें हैं, धन है दौलत है संसारिक विषयों में दुखी है, वो चीज इससे दूर है, उनको चाहने पर दूर, इसलिए इन सब चीजों को छोड़ करके यही तो संसार है, छोड़ करके अंततः उन चीजों में रहते हुए भी उसके आसक्ति को छोड़ करके इधर में आसक्त हो उसमें लोभपन ये भक्ति को बढ़ाए, और नहीं तो संसारिक अभाव को दूर करने में संसारिक दुखों को दूर करने में ही हमारा जीवन का सब कुछ एनर्जी चला गया तो फट गया, इसलिए इसको खूब गुण रूप में विशेष रूप में चाहिए, सबको ये जरूरत नहीं होगी, जिसको जरूरत होगी उसी की जरूरत, जो भजनशील होगा उनको इन चीजों की जरूरत होगी, इन पर विचार करके इन चीजों को ग्रहण करें। आज ये करें।